पकड़ी पकड़ी जगत को राष्ट्र परम गुरु आय श्वेत ध्वजा अध्यात्म की भूमंडल फहराए। पकड़ी जो है पकड़ रही है, भूले हुए हंसों को, सोए हुए हंसों को सदगुरु के जो हंस हैं संपूर्ण भूमंडल में फैले हुए हैं। कोई जगे हैं और कोई सोए हैं। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जीवन के अंतिम क्षण में शरीर छोड़ने के करीब 15 मिनट पहले कुछ भविष्यवाणियां की थी। संदेश दिया था, उद्घोषणा की थी। वह भविष्यवाणी क्या थी? योगी मरता नहीं है। वह भविष्यवाणी क्या थी? योगी शरीर का त्याग करता है। सद्गुरुदेव कभी नहीं कहे कि मैं मर रहा हूं, हमेशा यही कहते रहे कि योगी जो है शरीर को छोड़ता है, योगी शरीर का त्याग करता है। मृत्यु के विषय में कहते थे सद्गुरुदेव कि मृत्यु जो है क्रीड़ा है, मृत्यु एक खेल है योगी के लिए। भविष्यवाणी के क्रम में सद्गुरुदेव ने कहा कि विदेश में विहंगम योग का प्रचार आरंभ होगा इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, और यह प्रचार धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएगा अमेरिका में, कनाडा में, मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, युगांडा में, साउथ अफ्रीका में। अभी एक सज्जन आ रहे हैं युगांडा से, उनकी योजना है कि 40 देशों में प्रचार करना है। उनसे किसने कहा, उनको किसने प्रेरणा दी कि प्रचार करना है आपको? बंधुओं, हमारे आपके बीच एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम ही है सदगुरु सदाफल देव महाराज। सदा फल्यम ददाति, जो चारों फलों के प्रदाता हैं, सदगुरु देव ने भविष्यवाणी के क्रम में कहा कि मेरे हंस हंसनी पूरे भूमंडल में फैले हुए हैं। समय से मेरे उत्तराधिकारी आचार्य उपदेष्टा दूत सिपाही संदेशी जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। सदगुरुदेव कहते थे इशारे से, प्रचार तो मैं कर दिया, प्रचार तो हो गया। सदगुरुदेव कभी कभी आंखें बंद कर लेते थे और क्या कहते थे, जरा मैं देख लूं, जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छूट जाने के बाद क्या क्या हो रहा है, मेरा प्रचार अभियान कैसे चल रहा है। सद्गुरुदेव प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठ करके अपने सारे भक्तों को वहीं से देखते थे किसका क्या साधन चल रहा है। किसकी कैसी आस्था है, कौन मेरा उत्तम कोटि का शिष्य है, कौन मेरा मध्यम कोटि का शिष्य है, कौन मेरा कनिष्ठ कोटि का शिष्य है, किसकी संज्ञा अधम की है और कौन शिष्य मेरा अधमाधम की कोटि में है। सद्गुरुदेव ने कहा स्वरवीर के अंदर कि शिष्यों की पांच श्रेणियां हैं, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, अधम है और अधमाधम है। उत्तम कोट का जो शिष्य है, जो साधक है, उसे संज्ञा है हंस की। उत्तम कोटि पुरुष की यह अवधि खटमास, मध्यम कोटि साधकन अधिक समय अभ्यास, ज्यों जस शुद्ध अस्तित्व है क्यों तस समय विकास, अन्यूनाधिक का भेद है अधम कनिष्ठ उदास। सद्गुरुदेव ने कहा कि उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश सदगुरु सैन लखा वही नई भाषण आदेश। प्रवचन हम करते हैं, व्याख्यान हम देते हैं, प्रवचन व्याख्यान की भी एक श्रेणी है, एक भूमि है, एक मंडल है, एक केंद्र है। कहां से प्रवचन होता है, कहां से होती है दिव्य वाणी, कहां से होती है अमृत वाणी, कहां से होती है ब्रह्मवाणी, इसमें अंतर है। किस वाणी का आधार मूल आधार है, किस वाणी का आधार हृदय है, कौन सी वाणी होती है कंठ के द्वारा, किस वाणी का आधार मुख है। परा जो मूलाधार में हृदय में पसंति, कंठ में वही है मध्यमा मुख बाहरी अंत। ब्रह्म वेता यह जानते वाणी चार स्वरूप, तीन रूप अंतर गुहा चौथा बाहर रूप। प्रोशन की भाषण की भी कई भूमिया होती हैं, कई मंडल होते हैं। प्रथम आचार्य श्री सदगुरुदेव के आदेश से एक बार प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन जब हो गया तो सदगुरुदेव ने अलग से बुलाकर कहा कि देखिए, आपका जो प्रवचन है अनहद मंडल के नीचे से है। जो प्रवचन, जो भाषण अनहद मंडल की सीमा तक होता है, उस प्रवचन का आधार ब्रह्म नहीं होता, सदगुरु का चेतन केंद्र नहीं होता। जब आप प्रवचन करेंगे अनहद मंडल की भूमि से ऊपर हो करके, तो उसी प्रवचन का जनता पर, पब्लिक पर असर पड़ेगा। आज इस भौतिकवादी युग में किसको ज्ञान है कि प्रवचन कहां से होता है, भाषण कहां से होता है, दिव्य वाणी कहां से होती है, अमृत वाणी कहां से होती है और ब्रह्म वाणी कहां से होती है। यह जो विषय है दर्शन का नहीं है, या जो विषय है पांडित्य का नहीं है, या जो विषय है बिटंडावाद का नहीं है, तर्क का नहीं है। अरे, यह तो विषय अनुभव का है। सदगुरुदेव महाराज कहते थे आचार्य श्री को कि देखो, ज्ञान दो तरह का है। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा और एक ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सदगुरुओं के द्वारा। तो जो ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सदगुरुओं के माध्यम से, उस ज्ञान की चर्चा किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी वाङ्मय में नहीं मिलेगी, किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। उसका आधार तो ब्रह्म है, उसका आधार तो परमाणुओं का केंद्र है, उसका आधार तो अक्षर का ईक्षण प्रयोग है। एक मंडल है ब्रह्म का, एक मंडल है अक्षर का, एक मंडल है परमाणुओं के योग वियोग का। मैं पढ़ रहा था काशी में 1962 में प्रथम आचार्य श्री मेरे विद्यालय में पदार्पण किए, दर्शन दिए, अलग में बुलाए और क्या कहे कि यह जो भी हंगम योग है यह तो तुम्हारे घर की विद्या है, यह तो एक मिनट का कार्य है। अरे वह तो यहाँ है, यहाँ है। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, जब भी बैठो सामने बैठो, शक्ति को भेज रहा हूं, शक्ति को दे रहा हूं। अरे तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है, शक्ति जा रही है। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, जो शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध संस्कारी जीव है, उसके अंदर सदगुरु जो है अपने ज्ञान धारा को दे देता है, प्रवाहित कर देता है। बैठो चेतन केंद्र पर, बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल, भक्ति रस अनुभव सुख है पास। कहाँ बैठेंगे आपकी बैठक, कहाँ होगी? क्या जड़ शरीर में, क्या मन की भूमि में, क्या इंद्रियों की भूमि में? नहीं, आपकी बैठक जो होगी उसकी भूमि जड़ नहीं होगी, उसकी भूमि चेतन होगी। जिस मंडल में योगी जो है अपनी चेतना को स्थिर करता है, जहां पर बैठ करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करता है। मैंने भी जीवन काल में बहुत सा प्रयोग किया, बहुतों को शक्तिपात किया, बहुतों की चेतना को ऊर्ध किया, बहुतों की ब्रह्मनाड़ी को खोला, और कुछ तो ऐसे निकल गए कि शक्ति दी गई, शक्ति भेजी गई और शक्ति ने काम ही नहीं किया। शक्ति जो है टकरा गई और टकरा करके वापस चली आई। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि जो सदगुरु का भक्त होता है, सदगुरु का शिष्य होता है, सदगुरु का हंस होता है, उसके अंदर सदगुरु की जो शक्ति है, सदगुरु की जो धारा है, सदगुरु का जो प्रवाह है, सदगुरु की जो स्वाति है, बहुत जल्दी कार्य करना आरंभ कर देती है। और जिसका गुरु के प्रति भाव नहीं है, जिसके अंदर दीनता नहीं है, अधीनता नहीं है, जो अमानी नहीं है, जिसके अंदर छल है, कपट है, दुराग्रह है, जिसकी भावना कुत्सित है, उसके अंदर शक्ति जाती है, टकराती है और चली जाती है। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत हुआ। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि शक्ति अब किसी के पास नहीं भेजना है, शक्ति अब किसी को नहीं देना है। शक्ति जाती है, शक्ति को वे संभालते नहीं हैं, शक्ति का वे मिसयूज करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। शक्ति के भी कई प्रकार हैं। एक शक्ति वहां पर है जहां पर ब्रह्म विद्या विहंगम योग का विशुद्ध आध्यात्मिक बल है, वहां पर कोई सिद्धि नहीं है, वहां पर कोई विभूति नहीं है, वहां पर कोई तंत्र नहीं है, वहां पर कोई मंत्र भी नहीं है, वहां पर विहंगम योग का विशुद्ध आध्यात्मिक योग बल है। उस बल को पाने के लिए आवश्यकता जो है फिलॉसफी पढ़ने की नहीं है, व्याकरण पढ़ने की नहीं है, वह बल वह शक्ति जो है सदगुरु दूसरी महान आत्मा के अंदर प्रवाहित कर देता है, दे देता है। जिस तरह से परमात्मा है, जिस तरह से आत्मा है, जिस तरह से काल है, जिस तरह से प्रकृति है, जिस तरह से अक्षर सत्ता है, उसी तरह से सदगुरु भी एक सत्ता है जो व्यापक है। उस सत्ता का बंधुओं कभी नाश नहीं होता, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्य मस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम त्वं नमामि। उसी महान सत्ता के विषय में सद्गुरुदेव क्या कहते हैं स्वरवेद के अंदर, अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान असो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने कहा कि शक्ति निकल रही है किसके द्वारा, नखों के द्वारा। श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सद्गुरुदेव ने कहा कि शक्ति निकलती है केवल नखों के द्वारा ही नहीं, अरे शक्ति तो निकलती है नैनों के द्वारा भी, शक्ति तो निकलती है वाणी के द्वारा भी। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी बने कहीं आत्म उर्धार। तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो ज्ञान है उस ज्ञान में स्वयं का अनुभव है। सदगुरु देव ने उस ज्ञान को साधन करके, परिश्रम करके, तपस्या करके प्राप्त किया। सद्गुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले 3 दिन पहले क्या बोलते हैं, मैंने इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या के बाद प्राप्त किया था, आप इसकी रक्षा करेंगे। सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरा जो धन है हीरा नहीं है, मोती नहीं है, प्राकृतिक संपत्ति नहीं है, मेरा तो धन आध्यात्मिक है। मैंने अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक धन को बांटा है, मैंने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। आज के भौतिकवादी विद्वान जो अक्षर चट्टू हैं, अध्यात्म को ढूंढ रहे हैं कहाँ, योगा में। अध्यात्म को ढूंढ रहे हैं कहाँ, प्राणायाम में। अध्यात्म को ढूंढ रहे हैं डांस में, नृत्य में। अध्यात्म क्या आसन है, क्या प्राणायाम है, क्या नृत्य है? अध्यात्म तो अध्यात्म है, आत्मानमधि, जिसका स्थान आत्मा के भी परे है, जो आत्मा के भी ऊपर है। 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बड़ी प्रसन्नता है। जो भी योग के प्रेमी हैं सबके अंदर एक उत्साह है, उमंग है, लेकिन योग है क्या, योग किसे कहते हैं, योग की परिभाषा क्या है, कहाँ पर जड़ योग है, कहाँ पर चेतन योग है, कहाँ पर आसन है, कहाँ पर प्राणायाम है, इसका बोध, इसका ज्ञान आज योग जगत में किसको है? अरे उसी को है जिसके पास स्वर वेद है, जिसके पास सद्गुरुदेव हैं, जिसके पास विहंगम योग है। जो साधक भली भांत अनुभव करता है कि कौन सा योग शरीर का है, कौन सा योग मन का है, कौन सा योग बुद्धि का है, कौन सा योग प्राण का है, और कौन सा योग आत्मा का है, और कौन सा योग आत्मा से परे अक्षर का है। योग दिवस आप मनाएंगे, यह बड़े ही हर्ष का विषय है, लेकिन मैं सारे भूमंडल के जो भी योग प्रेमी हैं उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि योग जो है केवल आसन नहीं है, योग जो है केवल प्राणायाम नहीं है, आसन प्राणायाम को योग की सीमा में बांध करके अरे आप लोग योग का उपहास कर रहे हैं। योग को अगर किसी सत्ता ने जाना, योग को अगर किसी सत्ता ने अनुभव किया, तो वह सत्ता आज भूमंडल में एक ही है जिसका नाम है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। जिस सत्ता ने स्वर वेद में क्या कहा, योगन बाणी से बने योगन आसन साध, योगन प्राणायाम है कुंभक विविधन साध। सदगुरुदेव कहते हैं कि योगन बाणी से बने योगन आसन साध। योग जो है वाणी का विषय नहीं है, योग जो है आसन का विषय नहीं है, योग न प्राणायाम है कुंभक विविधन साध। योग जो है प्राणायाम नहीं है, योग जो है रेचक पूरक कुंभक नहीं है, योग जो है नेती धौली धौती नौली बस्ती त्राट कपाल भाती भस्त्रिका नहीं है, योग जो है चंद्रभेदी नहीं है, सूर्यभेदी नहीं है, उज्जाई नहीं है, शीतली नहीं है, सिद्धकारी नहीं है, भस्त्रिका नहीं है, अनुलोम विलोम नहीं है, योग तो योग है। सदगुरुदेव ने कहा, क्या कहा, योग कहत है जोड़ को, योग कहत है संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। सदगुरुदेव ने जो योग की व्याख्या की है ऐसी व्याख्या अन्य किसी साहित्य में देखने को नहीं मिली। वह तो देखने को मिला है केवल स्वरवेद में। सद्गुरुदेव ने कहा परम पुरुष अरुवात्मा संधि निरंतर योग अजल माया व्यापे नहीं कभी न हो योग। आत्मा परमात्मा का जो मेल है वह योग है। आसन प्राणायाम का योग जो है वह योग नहीं है, वह तो योग शरीर का है, वह तो योग मन का है। जिस योग के द्वारा आत्मा परमात्मा को प्राप्त करता है वह तो योग विहंगम योग है। योग योग सब कोई कहा योग न जाना कोय अर्ध धार उरध चले योग कहावे सोय। जो हमारी चेतना संसार के भोगों में है, संसार के माई पदार्थों में है, उपरम हो जाती है, ऊर्ध हो जाती है, जब मन का माया का अभिमान मिट जाता है उस काल में जो योग होता है वही योग है। आसन प्राणायाम की महत्ता है, महत्ता रहेगी, इसकी उपयोगिता है, उपयोगिता रहेगी, इसका लाभ है, इसका लाभ रहेगा। लेकिन योग को आसन प्राणायाम की सीमा में बांध देना योग का उपहास करना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सारे भूमंडल के जो भी योग प्रेमी हैं उनको मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि योग तो आत्मा परमात्मा का मेल है, योग तो जीव ब्रह्म का मेल है, योग जो है आसन प्राणायाम नहीं है, आसन प्राणायाम योग का एक अंग है। ऋषि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में योग के 8 अंग माने हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। तो आसन प्राणायाम अपने में कभी भी योग नहीं है, वह तो अपूर्ण योग है। जिस योग का संबंध तुम्हारे शरीर से है, तुम्हारे मन से है। योग की तो पूर्णता वहां पर है जहां पर विहंगम योग है, जहां पर ब्रह्म विद्या है, जहां पर सहज योग है, जहां पर मीन मार्ग है, जहां पर देवयान पथ है। धरि पताल गति फिरत आकाशा अश्च चक्र तब होय विकासा संपुट कमल फूल गुरु भेदा अर्ध ऊर्ध मुख अनुभव वेदा शेष कंप का मेरु फिराई मारी कुंडली बाहर जाई। अक्षर धनुष भेदगम ताना सुरति तीर सतपुरुष निशाना। शक्ति जो है कई तरह की है, शरीर के अंदर भी शक्ति है, मन में भी शक्ति है, प्राणों में भी ओज है, मेधा में भी शक्ति है, विचारों में भी शक्ति है, इंद्रियों में भी शक्ति है। माया की शक्ति एक अलग है, माया जाल अपार बझे तामे संसारा। एक ब्रह्म की भी शक्ति है, माया का भी विस्तार है और विस्तार है ब्रह्म का भी। एक शक्ति है जो शरीर की शक्ति से, मन की शक्ति से, प्राणों की शक्ति से, इंद्रियों की शक्ति से, विचारों की शक्ति से, मेधा की शक्ति से अलग है। वही शक्ति जो है आपकी अपनी शक्ति है। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या बतलाती है कि अपनी शक्ति को पहचानो। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न भया, लीन कवन विधि पार। अपनी शक्ति की पहचान, अपनी शक्ति का बोध कब होगा, कहाँ होगा, उसकी भूमि क्या होगी, उसका अनुभव क्या होगा, क्या कोई जानता है? कोई नहीं जानता। जानता है हमारा विहंगम योग परिवार। एकमात्र हमारा जो विहंगम योग परिवार संपूर्ण भूमंडल में जो है वो जानता है। क्या जानता है कि मन की भूमि क्या है, प्राण की भूमि क्या है, मन को कैसे, कहां पर, किस मुहूर्त में, किस विधि से, कितनी देर कंट्रोल किया जाए, मन को कैसे हम अंतर जगत में प्रवेश करें या प्रवेश कराएं अथवा कोई प्रवेश करा दे। इतना ही नहीं, हमारा भूमंडल का विहंगम योग परिवार ये भी जानता है कि मन कहां से चला है, मन का उद्गम स्थान क्या है, मन को कैसे मार दिया जाए। हम बातों बात में कहते हैं अमन चैन की बात। अमन चैन का मतलब क्या है? जहां मन न हो। तो बंधुओं, यह जो ज्ञान है आज विश्व में कहां पर है, किसके पास है? यह ज्ञान तो वहीं पर है जहां पर हमारे सदगुरु पितर हैं, जहां पर स्वर वेद है, एक मंडल है जहां पर एक विशेष समय में बैठ करके योगी जो है आवाहन करता है, बुलाता है। वह आवाहन, वह बुलावा का आधार शरीर नहीं होता, मन नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती, उसकी विधि मेरे पिताश्री ने, सदगुरु आचार्य ने बतलाई थी शरीर छोड़ने के 3 मास पहले गुफा में, कि योगी जो है अपनी शक्ति का संचार किस भूमि से, किस मंडल से करता है, कहां पर नए परमाणुओं को लेता है और पुराने परमाणुओं को छोड़ता है, कहां पर लोम विलोम की क्रिया होती है, बहुत बड़ा रहस्य है विहंगम योग के अंदर, अपार ज्ञान है, बेहद गंभीर ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। तभी तो सद्गुरुदेव ने कहा, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो तन का आसन है, मन का आसन है, आत्मा का आसन है, अक्षर का आसन है, इसका विवेक, इसका बोध, इसका ज्ञान एकमात्र विहंगम योग परिवार को है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर अपार गहन से गहन विषय पड़े हुए हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। समय मिलेगा तो व्याख्या होगी, प्रवचन होगा, संदेश दिया जाएगा, उद्घोष होगा, आदेश होगा, चेतावनी होगी, संकेत होगा, निर्देश भी होगा। इस शुभ अवसर पर जो भी हमारे विहंगम योग परिवार से जुड़े हैं, जो भी हमारे सदगुरु के संदेशी दूत हैं, सबका हर विधि से, हर तरह से, हर क्षेत्र में उद्धार हो, कल्याण हो, भौतिक विकास हो, शरीर से स्वस्थ रहें, मन भी स्वस्थ रहे, बुद्धि का भी विकास हो, घर में लक्ष्मी का आगमन हो, धन का आगम हो, सर्विस व्यापार में भी हम आगे बढ़ें, बहुत सी बातें कहनी थी। बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत सारे विषय हैं, समय का अभाव है। स्वर वेद ज्ञान दोहा यज्ञ जो हुआ है, इससे एक नई प्रेरणा मिल रही है, और मैं समझता हूं कि आज आवश्यकता है युवा शक्ति की। युवा शक्ति जब आगे बढ़ेगी, निश्चित है संस्थान आगे बढ़ेगा। युवा शक्ति के अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है, एक शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है, धैर्य है। परिस्थितियां 2 तरह की होती हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, अगर प्रतिकूल स्थिति आएगी तो युवा पीढ़ी कभी घबराने वाली नहीं है। युवा पीढ़ी के सामने चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वह अपनी गति से बढ़ती जाएगी। अगर परिस्थिति प्रतिकूल है तो उदास नहीं होगी, धैर्य नहीं खोएगी, आगे बढ़ती रहेगी और संस्थान को आगे दिशा देने में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका होगी। जो भी युवा पीढ़ी के हमारे सिपाही हैं, कर्मठ हैं, सबको मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि अपने विचारों से, अपने कार्यों से विहंगम योग के प्रचार प्रसार में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करें। ज्येष्ठ आत्मविज्ञान देव महाराज का जो संकल्प है स्वरवेद का जन जन में प्रचार, जन जन में प्रसार, विज्ञान देव महाराज यही चाहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो साहित्य हैं, जिनका प्रचार गांव गांव में है, घर घर में है, उसी तरह से स्वरवेद का प्रचार गांव गांव में हो, घर घर में हो, हर जिले में हो, हर प्रखंड में हो। इस कार्य को हमारी जो विहंगम योग संस्थान की युवा पीढ़ी है वह करने वाली है और वह करके रहेगी, क्योंकि उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा है, एक विशेष उत्साह है। हमारी युवा पीढ़ी है अपने बड़ों का सम्मान करती है, अपने बड़ों का आदर करती है, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से सलाह लेती है, परामर्श लेती है और तब कार्य करती है। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी ही खुशी की बात है। हमसे जो बड़े हैं, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, उनसे हम विचार करें, उनका हम सम्मान करें, उनसे हम सलाह लें और इसके बाद कार्य करें तो कार्य क्यों नहीं होगा, निश्चित होगा, सफलता हमें अवश्य मिलेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम विहंगम योग परिवार से जुड़े हुए हैं, सदगुरु के निर्देश में रहे हैं, सदगुरु के आदेश में रहे हैं, सदगुरु के नियंत्रण में रहे हैं, मनमानी अपने मन से कोई बात न करें, कोई सिद्धांत न फैलावें, सभी अनुशासन में रहें, अनुशासन में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, सिद्धांत के अनुकूल कार्य करेंगे, तभी जो है सद्गुरु का जो संकल्प है विश्व प्रचार का अवश्य पूरा होगा। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाय अधिकारी गुरु पद मिला विश्व ध्वजा फहराय। बोलिए सद्गुरुदेव की।
स्वरवेद महामंदिर धाम वाराणसी, स्वरवेद अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा योग की शीर्ष अवस्था में अनुभूत परमात्म ज्ञान की दिव्य अभिव्यक्ति है। इस अद्वितीय आध्यात्मिक महाग्रंथ के पठन मात्र से हमारा भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है। स्वरवेद का हर दोहा हमारे अंतर में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। इस ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाना मानव मात्र की श्रेष्ठ सेवा है। स्वरवेद महाग्रंथ को समर्पित स्वरवेद महामंदिर निर्माण में अपना सहयोग देकर इस दिशा में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा साधना केंद्र स्वरवेद महामंदिर अत्यंत दिव्य एवं विलक्षण है, जो विश्व भर के आकर्षण का केंद्र होगा। 20,000 साधकों से अधिक क्षमता के साथ कुल 64,000 वर्ग फुट में बन रहे इस विशाल सप्ततलीय महामंदिर को 6,00,000 वर्ग फुट संगमरमर से सुसज्जित किया जा रहा है। यहाँ वर्ष भर विश्व के कोने कोने से आए विभिन्न जाति धर्म के लाखों जिज्ञासु अलौकिक विहंगम योग साधना द्वारा परम शांति का अनुभव करते हैं। अध्यात्म भारत की आत्मा है। भारतीय ऋषि परंपरा का अद्भुत स्वरूप प्रस्तुत करता स्वरवेद महामंदिर भारत की नींव मजबूत करेगा। इस दिव्य महामंदिर की दीवारों पर स्वरवेद के सभी 5,000 दोहों के साथ वैदिक ऋचाओं एवं साहिब कबीर की वाणियों को उत्कृष्ट मकराना संगमरमर पर उत्कीर्ण किया जा रहा है। परिसर में स्थित विशाल गौशाला गौ सेवा का अद्भुत अवसर प्रदान करती है। दर्शनार्थियों हेतु सुविधा युक्त अतिथि भवन है। आइए देश के इस विशालतम आध्यात्मिक केंद्र के निर्माण के महान अनुष्ठान में अपना योगदान देकर आप भी यश के भागी बने। सेवा के इन दुर्लभ अवसरों का लाभ प्राप्त करके ही मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ करता है। बैंक खाता विवरण है स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट, HDFC बैंक, वाराणसी। अकाउंट संख्या 1087145000016।